समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा, एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड एट 100.1 MHz। आई एम रेशमा तिवारी एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट करिश्मा राय। लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, reports, capsules, tributes and much more. We begin with the headlines first. President Draupadi Murmu nominates 4 prominent personalities to the Rajya Sabha from fields of arts, literature, science and social service.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और कहा कि सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है।
FBI arrests 8 Khalistani terrorists across the United States in a major crackdown on international terror network.
भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला और XM-4 मिशन के चालक दल के सदस्य कल धरती पर वापसी की यात्रा शुरू करेंगे।
And in Wimbledon tennis, top seed Yannick Sinner to lock horns with defending champion Carlos Alcaraz in summit clash of men's singles in London tonight. And now, listeners, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about inclusion of 12 historic forts of Chhatrapati Shivaji Maharaj in the UNESCO World Heritage List. Renowned novelist Steve Berry once stated, "A concerted effort to preserve our heritage is a vital link to our cultural, educational and economic legacies, all of the things that quite literally make us who we are."
और ऐसा ही कुछ कहना था जॉन हेनरिक क्लार्क का, जिन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति का अपनी विरासत से वैसा ही रिश्ता होता है जैसा एक बच्चे का अपनी मां से होता है। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
This significant recognition marks India's 44th World Heritage Site and highlights the country's remarkable historical and architectural heritage, reflecting its enduring cultural legacy on the global stage. Wondering what UNESCO World Heritage Sites are? A World Heritage Site is a location recognized by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or UNESCO, for its outstanding universal value. It is guided by a convention concerning protection of world cultural and natural heritage called World Heritage Convention.
और इसके लिए 3 श्रेणियां हैं, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत और मिश्रित विरासत। किसी भी स्थल को इनमें से कम एक मानदंड पूरा करना आवश्यक है। मानव रचनात्मक प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करना, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व प्रदर्शित करना, स्थापत्य, पारिस्थितिक या भूवैज्ञानिक महत्व का उदाहरण प्रस्तुत करना या असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से युक्त होना। इसे मानव विरासत, चल रही प्राकृतिक प्रक्रियाओं या संरक्षण प्रयासों में योगदान देना चाहिए। अन्य मानदंडों में संपत्तियों का संरक्षण, प्रबंधन, प्रामाणिकता और अखंडता शामिल है।
Only countries that have signed the World Heritage Convention can submit nomination proposals for sites on their territory to be considered for inclusion. The nominated site is independently evaluated by the International Council on Monuments and Sites, ICOMOS, and the International Union for Conservation of Nature, IUCN. The final decision on its inscription is made by the World Heritage Committee, of which India is a member from 2021 to 2025.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठा सैन्य एवं भूदृश्यों को प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस मान्यता से हर भारतीय उत्साहित है। उन्होंने कहा कि इन मराठा सैन्य भूदृश्यों में 12 भव्य किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में हैं और एक तमिलनाडु में है।
Prime Minister Narendra Modi said the Maratha Empire is associated with good governance, military strength, cultural pride and social welfare. The Prime Minister added that great rulers inspire the countrymen with their refusal to bow to any injustice. Mr. Modi also urged citizens to visit these forts and learn about the rich history of the Maratha Empire.
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मराठा सैन्य भूदृश्यों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये भव्य किले मराठा साम्राज्य की रणनीतिक कुशलता, अदम्य साहस और सैन्य उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये वैश्विक मान्यता प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है।
Minister of Culture Gajendra Singh Shekhawat, along with Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis, have also lauded the historic milestone and congratulated the people of India for this achievement. Our correspondent has filed this report.
In a remarkable decision taken at the 47th session of the World Heritage Committee in Paris, India's official nomination, Maratha Military Landscapes of India, got inscribed on the UNESCO World Heritage List. The Maratha military landscapes have become India's 44th property to receive this recognition. During the committee meeting, 18 out of the 20 state parties supported India's proposal to get this important site inscribed in the list. Spanning from the 17th to 19th centuries, this extraordinary network of 12 forts demonstrates the strategic military vision and architectural ingenuity of the Maratha Empire. India ranks 6th globally and 2nd in Asia-Pacific region for the most number of World Heritage Sites. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किलो का एक समूह है जो मराठा साम्राज्य की चतुर योजना और शक्ति को दर्शाता है। ये किले विभिन्न भूभागों, पहाड़ियों, तटों और मैदानों पर राज्य की रक्षा और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए बनाए गए थे। मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं क्योंकि वे एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाते हैं, अद्वितीय वास्तुकला और तकनीक से युक्त हैं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं।
These forts reflect understanding of geography and strategic defense planning and are located across a range of diverse terrains from coastal outposts to hilltop strongholds. Across the states of Maharashtra and Tamil Nadu, the selected sites include Salher, Shivneri, Lohgarh, Khanderi, Raigarh, Rajgarh, Pratapgarh, Suvarnadurg, Panhala, Vijayadurg and Sindhudurg in Maharashtra, along with Jinji Fort in Tamil Nadu.
श्रोताओं, आप जानते ही होंगे कि मराठा सैन्य रणनीति के लिए पहाड़ी किले बेहद अहम थे। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के विपरीत, जो विशाल सेनाओं के साथ पारंपरिक युद्ध के लिए उपयुक्त थे, मराठा राज्य का भूभाग अलग था। एक तरफ अरब सागर, बीच में कोंकड़ का मैदान और मैदानों के ऊपर पश्चिमी घाट। 17वीं सदी में क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ था।
The Maratha icon was born and raised in the hill fort of Shivneri, given to Shivaji's grandfather by the Sultan of Ahmednagar in lieu of his services as a military commander. Shivneri is a typical hill fort found in the Western Ghats, a small but strong fortification atop a hill overlooking the surrounding terrain.
लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है, स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है, वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? हम मराठा है मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है।
म मराठा किले सिर्फ इमारत नहीं थी बल्कि वे प्रतिरोध, योजना और एकता के प्रतीक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के निर्माण और उसकी रक्षा के लिए इनका इस्तेमाल किया। रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे कुछ किले भारतीय इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। पुणे के आसपास की पहाड़ियों और घाटियों में पले बढ़े शिवाजी महाराज ने जमीन पर नियंत्रण के लिए पहाड़ी किलों की अहमियत को समझा था। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही शिवाजी महाराज को यह एहसास हो गया था कि दक्कन में सत्ता बनाए रखने की कुंजी महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा करना और उन्हें अपने कब्जे में रखना है। इसलिए उनकी रणनीतियां अक्सर पहाड़ी चोटियों पर स्थित किलों पर नियंत्रण करने पर केंद्रित थी। जैसे जैसे उनका नियंत्रण क्षेत्र बढ़ता गया, उन्होंने नए किलों की मरम्मत और निर्माण भी करवाया।
Warfare in such terrain is qualitatively different, with large conventional armies prone to getting bogged down. Thus, as Shivaji began to consolidate and expand his influence in the region, his strategies evolve to be significantly different from the common military doctrine of the time.
मराठा सेनाएं तेजी से हमला करती थी और क्षेत्र के कई पहाड़ी किलों की ओर पीछे हट जाती थी। इन किलों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इन तक पहुंचना मुश्किल था और अक्सर बड़ी सेना के लिए यह दुर्गम भी था। यह आदर्श रक्षात्मक स्थितियां थी जहां पर या तो बड़ी सेनाएं हमला करने की जहमत नहीं उठाती थी या अगर वे हमला करना चाहें तो उन्हें अपनी संख्या का त्याग करना पड़ता था। पहाड़ी किलों का निर्माण भी इस तरह से किया गया था कि वे किसी भी खतरे पर नजर रखने के लिए आदर्श स्थान थे।
A nation's heritage sites lay the foundation for future generations to remember and learn from. This global recognition is a testimony to New India's relentless pursuit of highlighting Bharat's heritage on the world forum.
और श्रोताओं, किसी भी विरासत स्थल का हर कोना एक कहानी छुपाए हुए है और ये मान्यता इन ऐतिहासिक खजानों को संरक्षित करने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Promising thrill-packed action in the breathtaking river landscapes of Kerala, the 11th edition of the Malabar River Festival will kick off from July 24 to 27 in Kozhikode. Renowned kayakers from different parts of the world will participate in this international competition. The Kerala Adventure Tourism Promotion Society and the District Tourism Promotion Council are organizing the event in association with the Kozhikode District Panchayat and the Indian Kayaking and Canoeing Association. We have a report.
The much anticipated Malabar River Festival, held across the rivers Chalipura and Erivayinipura near Tusharagiri, will once again highlight the visual beauty and adventure possibilities of Kerala's monsoon waters. This international kayaking event also reinforces Kerala's position as a leading hub for adventure sports in India. The 2025 edition will feature competitive events in both open and amateur categories. Participants will test their skills in kayak cross and downriver time trial events with classifications based on paddling experience. International kayaking stars from Russia, New Zealand, USA, Belgium, Italy and other countries will contest in this iconic river festival. Pre-events for the kayaking competition have already started with an angling competition, mud football tournament and a rain walk. The Malabar River Festival is a celebration of Kerala's rivers, its outdoor adventure potential and its appeal to global adventure travellers. The festival also supports Kerala tourism's broader vision to attract new visitors by highlighting offbeat destinations. Anila Balakrishnan for Parikrama from Thiruvananthapuram.
76वां वन महोत्सव देश के सात द्वीपों में भी हरियाली की लहर लेकर आया है। भारत में हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में मनाए जाने वाला वन महोत्सव एक राष्ट्रीय अभियान है जो लोगों को पेड़ों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। इस महोत्सव की खास बात यह है कि ये न सिर्फ मुख्य भूमि बल्कि देश के सुदूर द्वीपों क्षेत्रों जैसे हमारे द्वीप समूह में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
द्वीपों की सीमित भूमि और नाजुक पारिस्थितिकी को देखते हुए यहाँ वृक्षारोपण का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस महोत्सव के अंतर्गत द्वीप समूह में विभिन्न स्कूलों, पंचायत क्षेत्रों, सरकारी कार्यालय परिसरों और रक्षा स्थलों में बड़े स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल जैसे नारियल, पपीता, आम, बादाम, नीम और मैंग्रोव जैसे पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है। वन विभाग, शिक्षा विभाग, रक्षा बलों, एनजीओ और ग्राम पंचायतों के सहयोग से द्वीपों में जगह जगह हर हाथ में एक पौधा अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक संगठनों द्वारा हर घर एक पौधा, एक पेड़ माँ के नाम और हर जन्मदिन पर एक वृक्ष जैसे अभियानों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। द्वीपों में वन महोत्सव के अवसर पर स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनजातीय समुदायों ने पारंपरिक नृत्य और गीतों के जरिए प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संदेश दिया है। नुक्कड़ नाटक, भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग और इको मैत्री रैली जैसे कार्यक्रमों से बच्चों और युवाओं में पर्यावरण के प्रति चेतना का संचार हो रहा है। अंडमान निकोबार कमांड, कोस्ट गार्ड और पुलिस बलों ने भी इस अभियान में भाग लेते हुए सामूहिक पौध रोपण किया है। अधिकारियों ने जनता से अपील की कि वे हरित द्वीपों के निर्माण में सहयोग दें। पूरे माह 76वां वन महोत्सव ये संदेश लेकर आया है कि चाहे शहर हो, गांव हो या सुदूर द्वीप, हर जगह पेड़ ही जीवन का आधार है। परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से मैं पूजा सिंह।
And from south, now we'll take you to the extreme north of the country. Ladakh, the crown of India, is celebrating July as the month of compassion to honor the 14th Dalai Lama on his 90th birthday. The Nobel laureate is in Leh for nearly a month these days. The Dalai Lama was warmly received by the people belonging to different communities of the region on his arrival at Leh yesterday. The Dalai Lama will be visiting Zanskar Valley during his stay in Ladakh, giving an opportunity for the people of this remote region to receive his blessings. Let's hear more on this from our Leh correspondent.
His Holiness the Dalai Lama Tenzin Gyatso is warmly received by the people of Ladakh with full religious and traditional fervor. His Holiness' visit to Ladakh has brought a surge of joy and celebration across the region. Besides, the Ladakh Autonomous Hill Development Council LAHDC has declared to celebrate the whole July month as the month of compassion to honor the religious leader on his 90th birthday. The Dalai Lama has recently on 6th July celebrated his 90th birthday at Dharamshala, where a galaxy of people from around the world gathered to wish His Holiness a long and healthy life. To honor one of the most pious beings and to pay homage, a special award, Fearless Spiritual Teacher of the 21st Century, is presented to His Holiness during the grand function held there. The Dalai Lama, taking non-violence as his principal objective, has always worked to foster peace and harmony in the world. His Holiness has advised that in seeking a happy life, inner peace is more effective than material well-being. The 14th Dalai Lama has clearly demonstrated that Tibetan Buddhism derives from and preserves the rich ancient Nalanda tradition of India. On his arrival at Leh, the Dalai Lama urged the people of Himalayan region to protect, sustain and promote the rich legacy of Buddhist teachings and wisdom that once thrived in Tibet. For Parikrama, this is Phunsuk Wangmo from Leh Ladakh.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्काराज से होगा। मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। अल्काराज ने सेमीफाइनल में अमेरिका के ट्रेलर फ्रिट्स को और सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया था। इसी बीच पोलैंड की ईका स्वीटेक ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। स्वीटेक का ये पहले विंबलडन खिताब है और ब्रिटेन के जूलियन क्रैश और लॉयड ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है।
In cricket, hosts England today resumed their second innings against India on day 4 of the third test of the Anderson Tendulkar Trophy at Lord's. Hosts were at 50 for 3 a short while ago. England were 2 for no loss at stumps on day 3 yesterday. They now hold a 50-run lead as India were bundled out for 387 in their first innings, equaling England's first innings total of 387. The 5-match test series is currently level at 1-1.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগে।
13th July is the day when in 1905, Krishna Kumar Mitra openly called for the first boycott of foreign goods through his journal Sanjeevani. Krishna Kumar was a freedom fighter and a leader of Brahmo Samaj. Revolutionary freedom fighter Aurobindo Ghosh was his nephew. Krishna Kumar Mitra, through his paper Sanjeevani, played a major role in the spread of the Swadeshi movement.
We also remember martyr Ashfaqullah Khan, who was sentenced to death on the 13th of July, 1927. Born in a wealthy and educated family in 1900 at Shahjahanpur, Uttar Pradesh, Ashfaqullah was involved in nationalist activities from his school days. Ashfaqullah was one among the leading figures who executed the plan of the Kakori train robbery on the 9th of August 1925. He went underground after the incident, absconded for some time, and planned to go to Russia via Afghanistan. But betrayed by a friend, he was caught in December 1925 by the police. He was tried in the Sessions Court at Lucknow and sentenced to death on the 13th of July 1927. Ashfaqullah was hanged in Faizabad jail on the 19th of December 1927 when he was only 27 years old.
Also on the 13th of July 1929, Jatindranath Das began a hunger strike. Jatindranath Das, as a young man, was very committed to the national cause of freedom from British rule. At the age of just 17 years, he was an enthusiastic participant of the non-cooperation movement. He later joined the revolutionary organization Anushilan Samiti and then teamed up with Bhagat Singh and his comrades in the Hindustan Republican Socialist Association.
On the 14th of June 1929, he was arrested for revolutionary activities and was imprisoned in Lahore jail to be tried under the supplementary Lahore conspiracy case. In the Lahore jail, Jatin Das, along with other prisoners, started a hunger strike demanding jail reforms. This hunger strike started on the 13th of July 1929 and lasted 63 days. The jail authority took many measures to feed Jatin, including attempts to feed forcefully. However, Jatin did not eat and succumbed on the 13th of September. Thousands of people rushed to every station to pay their homage to the great martyr.
His body was received at the cremation ground by Subhash Chandra Bose, who described Jatinda as the young Dadhichi of India.
And now, let's get to our segment where we recall people who either share their death anniversaries today or their birth anniversaries. Let's begin with the death anniversaries. Magdalena Carmen Frida Kahlo was a Mexican painter known for her portraits, self-portraits and works inspired by the nature and artifacts of Mexico. Inspired by the country's popular culture, she employed a naive folk art style to explore questions of identity, post-colonialism, gender, class and race in Mexican society. Her paintings often had strong autobiographical elements and mixed realism with fantasy.
और इसके साथ ही आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी को, जो 20वीं शताब्दी की उन चुनिंदा लेखिकाओं में से एक थी जिन्होंने नारी जीवन, उसके संघर्ष यात्रा और स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को अपनी लेखनी का केंद्र बनाया। उन्होंने करीब 250 से अधिक उपन्यास, 1800 से ज्यादा कहानियां और कई बाल साहित्य की रचनाएं भी की। और इसके साथ ही उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास था प्रथम प्रतिस्तुति, एक मील का पत्थर माना जाता है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।
On 13th July 1960, Helen Joy Davidman left for the heavenly abode. Helen was an American poet and writer. Often referred to as a child prodigy, she earned a master's degree from Columbia University in English literature at age 20 in 1935. For her book of poems, Letter to a Comrade, she won the Yale Series of Younger Poets competition in 1938 and the Russell Loynes Award for Poetry in 1939. She was the author of several books, including two novels. David Mann published her best known work, Smoke on the Mountain, an interpretation of the Ten Commandments, in 1954 with a preface by C.S. Lewis.
और इसके साथ ही आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा को, जिनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। यशपाल शर्मा भारत के मजबूत मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक रहे, जिनकी बल्लेबाजी ने कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला। वो 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे। उस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ उनकी पारियों ने भारत की जीत की नींव रखी। खासतौर पे वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी 89 रनों की पारी आज भी याद की जाती है।
एंड मूविंग ऑन टू बर्थ एनिवर्सरीज, प्रकाश मेहरा, अ फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नोन फॉर हिज ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म्स, वाज बोर्न इन 1939. Prakash Mehra was one of the pioneers of masala films in Hindi cinema, along with Nasir Hussain and Manmohan Desai. His collaborations with the actor Amitabh Bachchan resulted in several box office blockbusters and classics, due to which Mehra was considered among the golden directors of his time.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं भारत की महान शास्त्रीय गायिका श्रीमती केसरबाई केरकर को, जिनकी आज जयंती है। केसरबाई केरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जयपुर अतरौली घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। उनकी गायकी में गंभीरता, गहराई और भाव का अद्भुत मेल देखा जाता था। उनका गाया राग जात कहां हो इतना प्रभावशाली हुआ कि उसे वॉयजर स्पेसक्राफ्ट के गोल्डन रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया, जो आज भी अंतरिक्ष में भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
Keserbai Kerkar was awarded the Sangeet Natak Academy Award in 1953, followed by Padma Bhushan, the third highest civilian award in India, in 1969. Today is also the birthday of Harrison Ford, an American actor, aviator, and environmental activist. He initially gained worldwide fame for his starring role as Han Solo in the original trilogy of the Star Wars film franchise, and would eventually reprise the role for the first film of the sequel trilogy. Ford is also widely known for his portrayal of the title character in the Indiana Jones action-adventure film series and as Tom Clancy's Jack Ryan in the spy thrillers Patriot Games and Clear and Present Danger, in addition to the new noir dystopian science fiction film Blade Runner in 1982 and its sequel Blade Runner 2049 in 2017.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय को, जिन्होंने 1950 के दशक में हिंदी फिल्मों में अपनी खूबसूरती, संजीदगी और अभिनय से खास पहचान बनाई। उनकी फिल्म संजोग से उनके करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म अनारकली से मिली, जिसमें उन्होंने अनारकली का किरदार निभाया था। और उनकी कुछ यादगार फिल्मों में ताजमहल और चंगेज खान भी शामिल है। कहा जाता है कि उनके गीत काफी फेमस होते थे, जो आज भी लोगों को काफी पसंद आते हैं। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है। बीना राय ने अभिनेता प्रदीप कुमार से विवाह किया था और सिनेमा को अलविदा कहने के बाद पर्दे से दूर रहकर एक शांत जीवन जिया, लेकिन उनके फिल्मों के गीत आज भी जिंदा हैं हमारी यादों में।
रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना।
तो इसी के साथ श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और इसी के साथ परिक्रमा कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार,
नमस्कार।